दादा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा गोपी धरा वल्लभा गिरिवर धारी गोपी धरा वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जाना वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 राम हेलो। పావన హరినామ సంకీర్తనకి శ్రీల ప్రభుపాదికి నిరంతరాత్ శ్రీమద్ భాగవతంకి అనంత కోటి వైష్ణవ వృందకి ఓం అజ్ఞానత విరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుఃఉన్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురుః శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణలలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ నమావోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాదీ పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణచైతన్యనామ్నే గౌరత్విషే నమః. హే కృష్ణకరుణాసింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంతరాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానోసుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరి హరే, హరి రామ 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 హరే హరే. బస్ నంబర్ आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद दूसरे अध्याय आठवां श्लोक. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. శ్లోక్ పఢ్ లెంగే అభీ పాలే హం. బాణావిమౌ భగవత శతపత్ర పత్రౌ శాంతావ పుంక రుచిరావతి మదంతౌ కస్మై యుయుంక్ష శివనే విచరన్న విద్మః. క్షేమాయ నో జడధియాం తవ విక్రమోస్తు. బాణావిమౌ భగవతః శతపత్రపత్రౌ శాంతావపుంకరుచిరావతి తిగ్మదంతౌ कस्मै जुजुंक्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोस्तु। शब्द शब्द पढ़ी।
बानो दो बान ईमो ये भगवान आपके सर्वशक्तिमान के शतपत्र पत्रों कमल के पंखुड़ियों जैसे पंखों वाले शांतो शांत अपुंक पंखर रहित रुचिरो अत्यंत सुंदर अति तीक्ष्ण दंतो अत्यंत तीक्ष्ण नोक वाले कस्मै किसको युक्षसि वेद देना चाहते हो वने वन में विचरण इधर उधर घूमते हुए न भिन्न हम समझ नहीं सकते क्षमाय कल्याण के लिए न हमारे जड़ धियाम जड़ बुद्धि वालों को तव तुम्हारा विक्रम शौर्य अस्तु हो।
अनुवाद और तात्पर्य।
तब अग्निध्र ने पूर्व चित्ति के बारे के बाके नेत्रों के को देखा और कहा हे मित्र तुम्हारे बाके नेत्र दो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। इन बाणों में कमल पुष्प की पंखुड़िया जैसे पंख हैं। मुठर रहित होने पर भी वे अत्यंत सुंदर है और उसके सिरे निकले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। तुम इस वन में किसी न किसी को इस बाणों से भेदने के लिए विचरण कर रहे हो किंतु किसे यह मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। दरअसल पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा परिक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो।
देखिए आप सबको प्रातःकालीन सत्र में स्वागत है। आजकल हम लोग श्री श्री राधा कुंज बिहारी के मंदिर में महाराज अग्निधर के अध्याय पढ़ते आए हैं जो पांचवें स्कंद के दूसरा अध्याय है। अभी अग्निधर नंदमादन पर्वत में जाकर तपस्या के लिए बैठा है। हाँ और पूर्वचित्य नाम के एक अप्सरा उधर विचरण करती हुई आती है। उनको देखते समय उनको देखकर क्या क्या बोला अग्निधर ने इत्यादि इसके बारे में बात चल रहा है। कोई आपको पूछ सकता है कि ये तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इतना दिव्य ग्रंथ है, भगवान संबंधित है, तो हम लोग भागवत लेते हैं पढ़कर हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रीति, भगवान के श्री चरणों में सेवा देने की इच्छा इत्यादि लेकर, लेकिन इधर आकर हम इस तरह के गंदे चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई लड़का बैठा था, कोई लड़की अप्सरा विचरण कर रही है और उसको देकर एक कमेंट मार रहा है। इस तरह के कार्य भागवत के अंदर क्यों दिया गया है, इसको सुनकर हमारे मन में विकारें उठते हैं, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो मेरे गुरु महाराज को किसी ने पूछा इसके बारे में, ऐसे ही प्रश्न पूछा, महाराज भागवत में ऐसे विषय बताए गए हैं जिसको सुनकर हमको मन में विकार उठता है और गंदे विचारें आते हैं। इस तरह के कोई अग्निधर पूर्वचिति इत्यादि की इनकी रोमांस, इनकी जो काम क्रियाएँ इत्यादि के बारे में क्या सुनना है हमको, हम तो भगवत भक्ति करने के लिए आए हैं। तो महाराज जी बोले, मेरे गुरु महाराज जी देखो इस दुनिया में अनेक लोग इन चीज़ों के बारे में खुले खुले बोलना नहीं चाहते, लेकिन अब उनके मन के अंदर ये सब चलता है दुनिया में विचरण करते समय, और जो बोलना नहीं चाहते वो करते हैं इस तरह के गंदे काम। महाराज बोले कि हम लोग इसको सुनते हैं भागवत से ताकि हम ना करें, इसलिए हम सुन रहे हैं भागवत से, ऐसे बोले। और ये भी बोले महाराज जी अगर हम लोग बैठे बैठे इन चीज़ों को सुन लेंगे, हाँ ये सुनकर समझ जाएंगे कि जो लोग इन चीज़ों में उलझ गए हैं इस तरह के काम क्रियाओं में, वो अंततः गत्वा सुख नहीं पाए, अंत तक अथवा उन्होंने तकलीफ ही उनको प्राप्त हुआ। अगर आपने सुन लिया इसको श्रद्धा पूर्वक, आप इस तरह के कामों में आप नहीं पड़ोगे आप, तो आपके लिए दो मार्ग है। या तो जैसे एमजी रोड में आकर लड़के लोग खड़े होकर उच्चारण करने वाले लड़कियों को देखते हैं, कमेंट मारते हैं, अगर वो मूर्ख लोग जो हैं वो स्त्रियों के तिरछी नज़र के वश में आकर उनके हाथ में क्रीड़ा मृग बनते हैं, हैं? अगर हमको उस तरह क्रीड़ा मृग बनना हो तो हम भी इस दुनिया में सब लोग देखते हैं बनते हैं ऐसे। लेकिन जो भागवत सुनता है वो बुद्धिमान हो जाता है। इसलिए भागवत पढ़कर इस तरह की लीलाओं को सुन लिया, ये जीव के अंदर ये प्रवृत्तियां हैं, इस तरह के रोमांच करने की प्रवृत्ति है, अपने आप को हीरो मानना, किसी दूसरे पर जीव को हीरोइन मान लेना, सोचना कि मैं हीरो हूँ, वो हीरोइन हूँ, हम नाटक करेंगे इस दुनिया में, इस तरह के काम में पड़ना जीव का स्वभाव है, बद्ध जीव का बद्धावस्था में। और भागवत इतना महान ग्रंथ है, उस तरह के जीव की जो नाटक करने की इच्छा है उन चीज़ों को भी जो जो भागवत इतिहास के तौर पर बताकर, अरे तुम पहला व्यक्ति नहीं हो इस दुनिया में, तुम जैसे अनेक आयाराम गायाराम लोग आकर गए हैं दुनिया में जो नाटक करके निकले हैं, हैं? तो भागवत बताता है कि उनकी कथा सुन लो, हैं? उनकी कथा सुनकर वो जिस कुपथ में पड़े उसमें तुम मत पड़ो, हैं? ऐसे भागवत सिखाता है। जो इसलिए भागवत सुनने वालों के अंदर कभी मंथन होता है उनके हृदय में इन लीलाओं को सुनकर। लेकिन सुंदरता क्या है भागवत में, इस तरह की लीलाओं को बताने के बाद अंत में आप सुनेंगे बोलेगा कि भगवान के श्री चरणों में शरण लेना चाहिए हमको, और इस तरह के गंदे कामों में नहीं पड़ने का भागवत बता देगा। जैसे अजामिल की कथा आप पढ़ते हो तभी आपको पता चलता है कि अजामिल एक गंदा दृश्य देखा, अपने पतिव्रता पत्नी को भगा दिया, अपने माता पिता को भी भगा दिया, उस वेश्या नारी को घर में लाकर 10 बच्चा पैदा किया। इस तरह की कथा सुनने के बाद हंतो तो कतवा यमपाश में बंधने वाला था ना, वो यमपाश से बंध गया, वो कितना उसका अधोगति आ गया उसको। तो हम लोग इस तरह की कथाएं सुनेंगे तभी पता चलेगा कि कितना खतरनाक इस दुनिया में एक ब्राह्मण भी पतित हो सकता है। तो हम लोग कभी गर्व नहीं करना चाहिए, हम सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, भगवान की भक्ति में डूबे रहना चाहिए, हैं? और गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए, हम लोग सीख लेते हैं, हैं? अगर कथा अच्छी तरह श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके सीख लिया तो हम बच गए, अगर श्रवण सही ढंग से नहीं किया तो भागवत नहीं पढ़ते हैं तो हम इस तरह के गंदे कामों में लग जाएंगे हम इस दुनिया में, क्योंकि चित्त अशुद्ध है, भागवत श्रवण नहीं किया है, अगर श्रवण भी किया तो श्रद्धापूर्वक श्रवण नहीं किया है, इसके कारण लोग इस दुनिया में गलत पथ में कुपथ में लग जाते हैं और लात खाकर वापस लौट आते हैं। सब खूबसूरती, सब शक्ति, सब पुण्य इत्यादि को खोकर वो जीव लौट आता है माया से लात खाकर, उसके बाद भगवान के पथ में जुड़ेगा पता नहीं कितने करोड़ों जन्म के बाद। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान हो तो इन लीलाओं को सुनकर उसको समझ लेना चाहिए। तो इधर बताया जा रहा है, ये अग्निधर बता रहा है कि ये उस स्त्री को बोल रहा है पूर्वचिति को, तुम्हारे आंख जो है एक बड़े तीक्ष्ण तीर के बराबर है, लेकिन तीर में वो जो उधर शार्प ये होता है ना, तीक्ष्ण चीज होता है, उसके बाद एक राड होता है, उसके पीछे कुछ पंखे जैसे होते हैं, वो बोलता है पंखा है या तीक्ष्ण चीज है लेकिन इतना लंबा ये नहीं है, राड नहीं है उसका, है तो ऐसे बोल रहा है क्योंकि आपके आंखें तिरछी नज़र जो है वो तीक्ष्ण है बोल रहा है। लेकिन बोल रहा है कि हालांकि वो तीक्ष्ण है लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे मारेगा नहीं, बोल रहा है वो, क्योंकि आपके आंख बहुत शांत हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं मारेगा। और बोल रहा है कि लेकिन आप उस आंखों को लेकर इधर विचरण कर रही हो, लगता है कि किसी को मारने की योजना है तुम्हारा, ऐसे बोल रहा है। अगर उस तिरछी नज़र से मुझे मार दोगे आप तो, और मारने के बाद मैं आपके पांव पकड़ूंगा और आप मुझे अपना बना लो, अपने पति बना लो, स्वीकार लो, अगर नहीं स्वीकारोगे मुझे, वो बोल रहा है, तो क्या होगा, इस दुनिया में अनेक सुंदर खूबसूरत स्त्रियां हैं जिनके तिरछी नज़र हैं, जो सिनेमा एक्टर एक्ट्रेसेस एक्ट्रेसेस जो होती हैं, तो उनकी तिरछी नज़र से ऐसे देखते हैं, अनेक पुरुषों को देखते हैं, वो सब पुरुष बेहोश होकर गिर पड़ते हैं उनकी तिरछी नज़र से, और उठने के बाद उनके हृदय में लालसा बढ़ जाता है कि वो स्त्री मुझे चाहिए, प्राप्त करना चाहिए पत्नी के रूप में, लेकिन मिलेगी नहीं, वो तो बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन ये लोग उस पिक्चर को देखते रहते हैं बार बार, जैसे कुत्ते कुत्ती के पीछे पड़ते हैं, ऐसे इस दुनिया में भी लोग एक ही स्त्री का अलग अलग वीडियो देखते हैं, अलग अलग पिक्चर देखते हैं, जैसे कुत्ते कामुक बनते हैं, इस तरह ये पुरुष भी कामुक बनकर पूरा जीवन व्यर्थ गंवाते हैं, समय की बर्बादी, चित्त को और अशुद्ध करते जाते हैं, अपेक्षा करते रहते हैं कि एक दिन स्त्री मिल जाएगी मुझे, इस तरह अधोगति हो जाता है उन पुरुषों का, और बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे पुरुष मत बना दो, मुझे अपूर्वचिति तिरछी नज़र तो मेरे ऊपर मत डालो, अगर डालोगे तो मुझे विवाह कर लो, अपना बना लो, ताकि मैं पति बन जाऊंगा, तुम प्राप्त हो जाओगी, मैं शांत हो जाऊंगा, ऐसे बोल रहा है वो, समझा ना आपको हाँ? तो ये बात है, तो इस दुनिया में अगर कोई स्त्री तिरछी नज़र डालती है किसी के ऊपर, वो मनमोहित नहीं होता है वो हाँ? वो स्थिर रहता है, तो उसका मतलब भगवान का भक्त है वो, तो हम देखेंगे उसके बारे में, उसके पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं, तात्पर्य पढ़िए।
अग्निधर पूर्वचित्ति के कटाक्ष के प्रशंसा करने लगा, उन्होंने उनके बाकी नेत्रों की तुलना तीक्ष्ण तीरों से की, यद्यपि उनके नेत्र कमल सदृश सुंदर थे, किंतु साक्ष ही वे मुठहीन तीरों के समान थे, इसलिए अग्निध्र उससे भयभीत हो गया।
हाँ देखिए, ये दुनिया का बुरा हाल है, ये बोल रहा है कि उनके आंखें कमल के पंखुड़ियों जैसे थी, वैसे तो कमल का पंखुड़ी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है, जो कमल नयनम भगवान नारायण का होता है, भगवान कृष्ण का होता है, प्रभु रामचंद्र जी का होता है, श्री रामम दशरथात्मजम प्रमेयम सीतापतिम रघुकुलान मयरत्न दीपम आजान बाहु अरविंद दलायताक्षम, उनका नाम है अरविंद दलायताक्षम, उनके प्रभु रामचंद्र जी की आंखें अरविंद दल के बराबर है, कमल के पंखुड़ी के बराबर है, इसी तरह वेणु क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम, कृष्ण का भी अरविंद दलायताक्षम, इस तरह प्रभु भगवान विष्णु का भी पता गया है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं, उधर कमलनयनं बताया गया। तो अभी तीनों का श्लोक बोल दिया मैंने आपको, प्रभु रामचंद्र जी का, नारायण का और कृष्ण का, तीनों का आंख क्या है, अरविंद दल के बराबर है, कमल के दल के बराबर है, उनको छोड़कर इस दुनिया में भी किसी स्त्री पुरुष का आंखें अगर कमल दल जैसे दिख रहा है किसी को, उसका मतलब वो माया के वश में आ चुका है वो हा? क्योंकि इस दुनिया में इस तरह वो बोल रहा है कि तुम्हारे आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर है, ऐसे बोल रहा है इधर, और बोल रहा है कि लेकिन साथ साथ वो बहुत तीक्ष्ण भी है, बोल रहा है क्या कमल के पंखुड़ियां क्या तीक्ष्ण है क्या, वो तीक्ष्ण नहीं है वो हा? वो तो एकदम कमल के पंखुड़ियां मुलायम होता है ना, वो कैसे तीक्ष्ण हो सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे भौतिक दुनिया में जो भी चीज़ें अच्छे लगते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, वो ही एक व्यक्ति को बड़े कतरे में डाल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं जो कोको चॉकलेट है, अगर बच्चे छोटे बच्चे को दो तोड़ा खाने के लिए, खाने के बाद इतना लालसा बढ़ जाता है, बार बार खाने की मन करता है, पूरा पैकेट चार पाँच पैकेट खाने के बाद भी इच्छा होता है और खाने की, जब तक सब सबके सब दांत गिर जाते हैं तब कोई खा नहीं पाएगा, इस तरह खाने की इच्छा होता है। इस तरह दुनिया में भी जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे भी ये बोल रहा है, स्त्री की तिरछी नज़र बोल रहा है, वो देखने में कमल के पंखुड़ियों के बराबर है, अच्छा दिख रहा है वो, लेकिन वो एक व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। जैसे अगर कोई विवाहित पुरुष है, उसके माता पिता ने चुनकर एक गुणवती नारी से विवाह करके उसको सेटल किया है, जैसे अजामिल है, अजामिल को एक गुणवती नारी से विवाह हुई है, उसके माता पिता भी अच्छे हैं, धार्मिक लोग हैं, पत्नी भी अच्छी है, पतिव्रता है, पति की सेवा देती है, भगवान जैसे उसको सेवा दे रही है घर में, लेकिन जंगल में जाकर एक शूद्रानी को देखता है और उसकी तिरछी नज़र के वश में आता है, देखिए कितना बड़ा मूर्ख है। तो इस दुनिया में आप देखेंगे ये जो वेश्या नारी होती है वो और खूबसूरत दिखती है, है लेकिन पत्नी जो है वो गुणवती है वो खूबसूरत नहीं दिखती है। तो पुरुष सोचता है कि पत्नी देखो घर में थोड़ी मोटी हो गई, 3 बच्चे हो गए, लेकिन वो वेश्या नारी देखो बहुत सुंदर दिख रही है, तो उसके पीछे पड़ेगा, वेश्यागमन करेगा, उसको व्याधियाँ हो जाएंगे, हैं अस्पताल में एडमिट होगा और उसकी वासना भी बढ़ेगा, हैं कितना मूर्खता है। इसलिए दुनिया में अच्छे लगे, कुछ भी चीज़ अच्छे लगे, पहले पूछना चाहिए कि ये क्या भगवान के सैंक्शन्ड एंड सैंक्टिफाइड बोलते हैं। अभी विवाह करना शास्त्र में सैंक्शन दिया है उसके लिए भगवान ने, धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मी भरत ऋषभा भगवान बोलते हैं, विवाह के लिए सैंक्शन भी है। और अगर कोई विवाह करके भगवान की भक्ति में जुड़ेगा वो सैंक्टिफाइड है, उसका मतलब है विवाह तो अनुमति है शास्त्र में, और भगवान की भक्ति में कोई जुड़ेगा तो दिव्य भी हो जाता है विवाह ऐसे। इसके विरुद्ध अगर कोई खूबसूरत नारी को देखता है इसके साथ जुड़ना क्या सैंक्शन दिया है शास्त्र में? नहीं, अवैध संघ को मना किया है, तो व्यक्ति को उधर ही रोक टोक डाल देना चाहिए उसको। लेकिन मूर्ख लोग इस तरह पढ़ सकते हैं कोई सोच कर कि ये कमल नयन है। इसलिए अनेक लोग, बड़े बड़े राजा लोग विषकन्याओं के चंगुल में आकर सारे राज्य भी खो बैठे, अपने अपने जान को भी खो बैठे। विषकन्या के एक चुंबन से मर गए बड़े बड़े राजा लोग, जिनके बहुत बड़ा विशाल प्रदेश था जिनका। इसलिए उन दिनों में चाणक्य नीति में पढ़ते हैं, उन दिनों में ऐसे विषकन्या लोग थे, अगर कोई राजा बड़ा प्रभावशाली होता था उसको उसका टांग खींचना उसको मारना हो तो विषकन्या के द्वारा मारते थे ऐसे। तो इसलिए एक स्त्री के वश में अगर कोई पुरुष आ गया तो वो कमजोर पड़ जाता है, उसके पास कुछ शक्ति नहीं रह जाता उसके बाद। तो आगे पढ़िए।
उन्हें आशा थी कि उनके कटाक्ष उनके अनुकूल होंगे, क्योंकि वे पहले से मोहित थे और जितना ही अधिक मोहित होते उनके लिए उनसे उसके बिना रह पाना उतना ही कठिन होता। इसलिए अग्निध्र ने पूर्वचित्त से प्रार्थना की कि उसके कटाक्ष उनके लिए कल्याणकारी हो। दूसरे शब्द में उन्होंने प्रार्थना की कि वह उनकी पत्नी बन जाए।
देखिए, तीन चीज हो सकता है एक व्यक्ति की। एक स्त्री तिरछी नजर डाल रही है किसी पुरुष के ऊपर, अगर उसको पति बना लेती है, पति बन गया, क्या तृप्त हो जाएगा क्या? शुरुआत में थोड़ा तृप्त होगा, ये स्त्री ने मुझे देखा और बहुत आकर्षक हो गया मैं और विवाह किया, थोड़ा तृप्त होगा वो। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसके उसके बीबी के साथ झगड़ा हो जाएगा उसके बाद, आप देखेंगे। क्योंकि अगर ये कामुक हो, वासनाओं के अंत ही नहीं है, उसकी अपेक्षाएं बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो उसके कारण विवाहिक जीवन में भी एक कामुक व्यक्ति शांति से कभी तृप्ति से नहीं रह सकता है। कल और एक स्त्री को देखेगा जो इसके बीवी से भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो ऐसे देखा गया इस दुनिया में। कोई विवाह करता है कोई स्त्री से, अगर कल देखता है कि उसके छोटी बहन उससे और ज़्यादा खूबसूरत है तो उसके उसके पास इसका आकर्षण चला जाता है, इसके कारण घर में बड़ा झगड़ा हो जाता है, देखा गया। तो एक तो ये विवाह कर सकती है, दूसरा है ये अगर ये एक व्यक्ति शांत होकर भगवान की भक्ति में तृप्त हो गया हो, इस स्त्री के तिरछी नज़र के वश में नहीं आएगा वो। वो क्यों नहीं आएगा, अभी दूसरा तात्पर्य आपको दिखाएंगे। तो अपने भक्ति में लगे रहेगा वो, वो सोचेगा अरे इस तरह के नाटक हमने बहुत देख लिया इस दुनिया में, कितने स्त्रियाँ आई हैं, कितने नाटक किया, कितने विश्वामित्रों को टांग खींच कर चली गई हैं इस दुनिया में, तो ये नई बात नहीं है। तो देखेगा ठीक है, कुत्ता कुत्ती से आकर्षित होता है, इस तरह शेर शेरनी से, मोर मोरनी से, है ये तो दुनिया का विधि है, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम तो परलोक से आए हैं, हम तो भगवान के हैं, इस तरह सोचकर उसको नकार कर अपने भक्ति में लगे रहेगा वो, ये दूसरी बात है। या तो विवाह करेगा नहीं तो अपने भक्ति में लगे रहता है, चलता है उसका। अगर विवाहित तो होकर वो दोनों पति पत्नी भक्ति में लग गए, वो भी शांत हो जाएंगे, भक्ति में ही तृप्ति है। इस तरह नारद मुनि नारद भक्ति श्रम बताते हैं, तृप्तो भवती आनंदी भवती ऐसे बोलते हैं, तुष्टो भवती ऐसे आप पढ़ेंगे नारद भक्ति सूत्र में। तो विवाहित पुरुष स्त्री भी तृप्त हो सकते हैं भक्ति मार्ग के द्वारा, नहीं तो अगर कोई विवाह नहीं करता उस स्त्री से वो भी तृप्त रहेगा वह। लेकिन तीसरा व्यक्ति है जो उसको देखा, इसने उसको देखा लेकिन वो विवाह नहीं किया इसको, वो नारी इसको देख कर छोड़ दिया इसे, वो बेचारा लालची, उसका लालच बढ़ जाएगा, जीवन भर कुत्ता बनेगा वो, क्रीड़ा मृग बनेगा वो, उसके उसके हृदय में आग बढ़ता रहेगा, ये मिलेगी क्या, मिलेगी क्या, मिलेगी क्या, हृदय में जल जल कर मर मिटेगा वो ऐसे व्यक्ति, शांत नहीं रह पाएगा ऐसे व्यक्ति। इसलिए मैं बोल रहा है अग्निधर, मुझे ऐसे छोड़कर अधोगति में डालकर मत चले जाओ, अगर मेरी ओर नजर डाल रहे हो तो मुझे विवाह कर लो, ऐसे बोल रहा है इधर। तो ये कमजोर व्यक्ति का लक्षण है। तो अभी हम एक तात्पर्य आपको दिखाएंगे। इधर देखिए, इधर बहुत एक सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, आपको दिखाएंगे आपका। इस दुनिया में ये 2.7.6 है आपके पास, वो दिखाना हिंदी में भी दिखाना। 2.7.6 में श्लोक है, 2.7.6 नारायण ऋषि का वर्णन आता है। नारायण ऋषि के बारे में बताया गया है कि भगवान इस दुनिया में अवतरित होते हैं, तब इंद्र ने देखा कि नरनारायण ऋषि बैठे हैं उधर बद्रिकाश्रम में, कठोर तपस्या में लगे हुए हैं। इंद्रों को लगा कि अरे ये इतना तपस्या कर रहे हैं, इतना तपोबल अर्जित कर रहे हैं, तो मेरा पदवी उड़ जाएगा, ये आकर बैठ जाएंगे इंद्र पदवी में। इस तरह डर के मारे इंद्र ने कामदेव को बुलाया, रति को बुलाया, दोनों को भेजा, चलो जाकर आप उनको विचलित करो, अगर वो काम क्रियाओं में लग जाएगा वो, उसके तपोबलम जो है वो मिट जाएगा, तो मेरे पदवी के लिए स्पर्धा नहीं कर सकता, ऐसे सोचा उन्होंने। लेकिन ये लोग गए, लेकिन जाने के बाद भी उनको कुछ नहीं कर पाए, तो बताया जा रहा है इधर। उस समय नारायण ऋषि ने उनको जब देखा, कामदेव जो एक झाड़ के पीछे छुपा था, मुस्कुराते हैं उनको बुलाए, इधर आ जाओ आ जाओ, चुप कर रहने की क्या बात है। उनको मालूम हो गया कि ये एक मनोरम वातावरण बना रहे हैं, एक जैसे वसंत ऋतु का कोयल बहुत अच्छा कलरव कर रही है, और हल्का बारिश हो रहा है, मंद हवा बह रही है, और सुगंधी फूल खिल उठ रहे हैं, इस तरह का वातावरण बनाया ताकि नरनारायण ऋषि के हृदय में एक वासना को पैदा करेंगे। तो नरनारायण ऋषि का कुछ भी असर नहीं पड़ा उनके ऊपर, इसके विरुद्ध उन्होंने मुस्कुराया, बुलाया, कामदेव रति इधर आ जाओ, आप लोग आइए इधर बैठिए, आप हमारे घर में मेहमान के रूप में आए हैं, थोड़ा प्रसाद पाइए, थोड़ा आराम कीजिए। आई सर बोलकर उनको बुलाया, ये लोग डर के मारे गिड़गिड़ाते हुए गए, अभी क्या दंड देने वाले हैं क्या हमको, हम तो कुछ गलत काम करने के लिए आए हैं। उनको अच्छी तरह बिठाकर तब नारायण ऋषि के जांग से सुंदर सुंदर अप्सराएं निकलने लगी, आसमान में उड़ रहे थे। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा कुछ ही क्षणों में, आप देखेंगे सुंदर सुंदर अप्सराएं निकल रही थी, एक दो नहीं अनगिनत अप्सराएं उड़ रही थी, और अलग अलग पोज में नाच रही थी वो, ऐसे हैं अलग अलग नाटक ये कर रही थी, नृत्य कर रही थी वो। तो मदन ने बोला रति को, अरे देखो हमारे स्वर्गलोक में भी ऐसे अप्सराएं नहीं है, भगवान के जांग से इतने अप्सराएं निकल रही हैं ऐसे। तब भगवान ने बोला, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इंद्र ने भेजा आप लोगों को, इंद्र को बोलो डरो मत, उनके लिए एक डोनेशन भी दे देता हूँ, एक उर्वशी नाम का, एक उरु का मतलब है जांग, उर्वशी का मतलब जांग से उत्पन्न हुई अनेक अप्सराओं में वो एक थी, लेकिन सबसे खूबसूरत थी वो, उसको दे दिया भगवान ने। किसको? मदन को दिया, बोला कि लेके जाकर उनको दे दो, इंद्र को दे दो, भगवान ने भेजा तुम्हारे लिए करके, दे दो उनको। तो जब मदन वापस लौट गया तब इंद्र डरने लगा, ऐसा हुआ क्या, भगवान पहचान लिया क्या, कुछ पता नहीं हुआ उनका, अच्छा उर्वशी भी दिया क्या, तो खुश हो गया इंद्र, अपने अपने महल में, इंद्र के राजमहल में वो उनको नर्तकी बना लिया, उनको रख लिया उनको। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, भगवान के मन को कोई विचलित नहीं कर सकता है इसे, ये बताया जा रहा है इधर तात्पर्य में, प्रपंच यही बताते हैं। तो इधर प्रपंच बताते हैं तीन आश्रम हैं जिसमें शरीर के प्रलोभन में कोई पड़ता नहीं जो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यास, लेकिन गृहस्थ आश्रम में स्त्री के साथ रहकर पति पत्नी गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए अनुमति है शास्त्र में। बच्चे पैदा करके बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाकर आगे बढ़ने के लिए अनुमति है। उसको छोड़कर बाकी तीन आश्रमों में लोगों को भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए और स्त्री के संग में नहीं रहना चाहिए, बोलते हैं प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में। वो एक बात बोलते हैं और आगे जाकर वो बोलते हैं और एक चीज इधर कि ये सारी दुनिया मोह माया में मोहग्रस्त होकर स्त्री के आकर्षण में पड़ा है, और जब स्त्री पुरुष साथ में आकर एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा गांठ बन जाता है, भौतिक आसक्ति का गांठ, और उससे पुरुष के अंदर एक भावना आता है उस मैथुन जीवन से कि वो सारे दुनिया के ऊपर अपने स्वामित्व जमाने की इच्छा बढ़ जाता है पुरुष में। तो इस तरह स्त्री के संग में आकर वो बाहर जाता है, पैसा कमाता है, बड़ा या अपने भौतिक जीवन को विस्तारित करता है व्यक्ति, तो भक्ति को भूल जाएगा वो, भौतिक जीवन का विस्तार करेगा वो, इस तरह हो जाता है। तो प्रभु जी बोलते हैं कि विवाहित जीवन में भी नियंत्रित होकर स्त्री पुरुष भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहिए गुरु के आदेशानुसार, ऐसे वो बताते हैं ऐसे। इसलिए ट्रेनिंग चाहिए बोलते हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ऐसे बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं वो स्त्री के साथ कुछ संबंध ही नहीं होता उनका, और वो लोग आगे जाकर सन्यासी बनते हैं, और उनको इस तरह ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक स्त्री को संभालना हो तो इस दुनिया में स्त्री परिवार काम धंधा इत्यादि की बोझ को संभालना पड़ेगा उसको, और अपने आध्यात्मिक जीवन में वो बाधा डाल सकता है, इस तरह समझ सकते हैं, ऐसे प्रभु जी बोलते हैं तात्पर्य में। लेकिन अगर किसी के कोई ब्रह्मचारी है, अगर किसको विवाह करना हो क्योंकि वो तरुण अवस्था में उसके अंदर वेग है, तो गुरु अनुमति देते हैं प्रभु जी बोलते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी वो एक लाइसेंस है बोलते हैं, वो लाइसेंस देते हैं ठीक है तुम विवाह करके गृहस्थ बनकर तुम भक्ति में आगे बढ़ो ऐसे। और गुरु जहाँ समझते हैं कि कौन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह सकता है, कौन विवाहित तो हो जाना चाहिए, उसके अनुसार वो आदेश देते हैं शिष्य को, ऐसे बताते हैं। लेकिन प्रभु जी बोलते हैं कि इस तरह प्रशिक्षण के ऊपर जोर दिया है इस तात्पर्य में। तो आगे जाकर प्रभु जी बताएंगे, एक मिनट, एक अच्छा उदाहरण देते हैं इस तात्पर्य में। अगर आप एक मिठाई के दुकान में जाओ, आप बोलेंगे मिठाई के दुकानदार को, अरे आपके दुकान में 50 बॉटल है, हर एक बॉटल में अलग अलग चॉकलेट्स हैं, अलग अलग मिठाई रखा है आपने, अरे ये सब खाकर आपका पेट दुखता नहीं क्या, आप अभी तक जिंदा कैसे हो, इतना पड़ा है आपकी दुकान में। वो हंसेगा, बोलेगा मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ बेचता हूँ, बोलेगा ना। ये उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, जो मिठाई का दुकानदार होता है वो मिठाइयों से आकर्षित नहीं होता, वो सिर्फ बेचकर पैसा बनाता है बस। इसी तरह भगवान जो अपने जांग से अनेक सुंदर सुंदर खूबसूरत स्त्रियों को पैदा किया है, वो खुद उन स्त्रियों से आकर्षित नहीं होते, वो लेश मात्र भी। इसके विरुद्ध बाकी जनता आकर्षित होता है, बाकी जीव आकर्षित होते हैं, भगवान आकर्षित नहीं होते हैं, वो धीर ललित हैं। अनेक स्त्रियों के बीच में भी भगवान के मन विचलित नहीं होता, ये पढ़ते हैं हम द्वारका रानियों के संबंध में। उधर भी कामदेव गया था अपने गन्ने का धनुष लेकर, फूल का बाण लेकर भगवान की ऊपर चलाने के लिए, वो रानियों की खूबसूरती देखकर बेहोश होकर गिर पड़ा वो ये कामदेव। देखा कि इतने उनके भी तिरछे नजर थे, खूबसूरत चेहरे थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनी थी रानियां द्वारका की, अच्छे अच्छे गहने पहनी थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, उनके चलना फिरना जैसे मोर जैसे चल रही थी, वो देखने में बहुत सुंदर थी। वो सोचा कि अरे इतने 16,000 रानियों से विवाह किया है, इनके अंदर मैं काम भावना पैदा कर दूंगा तो नाटक देखूंगा, सोचा उसने। लेकिन भगवान के हृदय में लेश मात्र भी काम घुस नहीं पाया है, ऐसे एक श्लोक है। उद्धाम भाव पिशुनाम अलबल गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनोपियासाम सम्मुख्य चापम अजघात प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियम विमतितुम कुहकैर्न शेकुः, ऐसे बताया गया है। यस्य इंद्रियम विमतितुम कुहकैर्न शेकुः, कुहकैर्न मैजिक, अपने मैजिक दिखाया कौन, कामदेव, उनका मैजिक से कुछ नहीं हुआ है। भगवान पराजित नहीं है, उनकी इंद्रिया विचलित नहीं हुई है, एकदम धीर पुरुष थे भगवान, शांत पुरुष थे वो, खूबसूरत स्त्रियों अपने पत्नियों से आकर्षित नहीं हुए। ये देखकर कामदेव खुद ही बेहोश होकर गिर पड़ा उधर द्वारका में, भी ऐसे हुआ ये घटना घटी उधर। चाहे वो नारनारायण ऋषि के रूप में आए भगवान तपस्वी होकर, नहीं तो एक राजा रहे उधर द्वारका के द्वारकाधीश, भगवान विचलित नहीं होते कभी भी। इसके विरुद्ध भगवान द्वारकाधीश रानियों की सेवा भाव से उनके मन पिघलने लगा। उन्होंने सोचा कि मैं रानियों को देखो कितना भव्य, उनके अंदर भावना देखो सेवा की, तो उससे भगवान प्रभावित होते थे। वृंदावन हो द्वारका हो, भगवान से सेवा से भावग्राही जनार्दन बोला गया, भाव से भगवान प्रेरित होते हैं। जैसे एक मिठाई का दुकानदार मिठाइयों को खुद गाता नहीं लेकिन बेचता हो, भगवान भी इस दुनिया में अनेक मायावी सुंदर स्त्रियों को बनाए हैं, जो मूर्ख पुरुष जो है उनको नचाने के लिए, और धीरे धीरे वो लोग अपने रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से लात खाकर बाहर आकर उसके बाद ऊपर उठेंगे सत्वगुण में, और भगवान के भक्त में स्थित होकर अग्रसर होंगे भक्ति में। उनको एक उनको सीख सिखाने के लिए इस तरह का स्त्री पुरुष का संबंध रखा गया है। लेकिन अगर कोई, कुछ लोग विवाहित जीवन में भक्ति में जुड़ते हैं, हमारे इस्कॉन में ऐसे भी हैं लोग, स्त्री पुरुष विवाह करने के बावजूद भी एक दूसरे से आकर्षित ना होकर दोनों भगवान से आकर्षित होते हैं, वो लोग सन्यासी जैसे ही सेवा देते हैं। पति पत्नियां भी, प्रभुपद ने एक गृहस्थ को लिखा, आप पति पत्नी इतना सेवा देते हो, इतना सेवा देते हो, आप तो सन्यासी के बराबर हो दोनों, ऐसे बोले प्रभुपद जी। ऐसे भी परिवार हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि किसी के पास स्त्री है इसका मतलब है वो गया हाथ से, ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों भक्ति में बहुत बढ़िया भक्ति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये बात बताया जा रहा है कि नरनारायण ऋषि आकर्षित नहीं हुए इस तरह के। और आगे जाकर एक श्लोक है इधर ही 277, कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुतते न दहन्त्यसह्यम सह्यम सोयम यदंतरमलम प्रविशन विभेति काम कतम पुनरस्य मनश्रयेत। इधर अनुवाद इस प्रकार पढ़िए 277 अनुवाद।
शिव जैसे महापुरुष उनकी रोषपूर्व चितवन से वासना काम को जीतकर उन्हें दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं उनके क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वे उससे ऊपर हैं। तो फिर भला उनके मन में वासना को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है?
भगवान के मन में काम के लिए आश्रय किधर है पूछ रहे हैं, बताओ कैसे काम वासना भगवान के हृदय में आश्रय ले सकता है, क्योंकि लेश मात्र भी काम नहीं, लेश मात्र भी क्रोध नहीं उनमें। कुछ लोग बोलते हैं अरे नरसिंहदेव क्रोध नहीं किया क्या, ऐसे पूछते हैं। अरे नरसिंहदेव के क्रोध से उद्धार हो गया हिरण्यकशिपु की, ऐसे नरसिंहदेव के क्रोध से प्रहलाद के हृदय में इतने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं उदय हुए। अभी पृथु महाराज भी भगवान के एक शक्तिवेश अवतार थे, उनके क्रोध से भूमि से कितने कितने विविध चीज उगने लगे, भूमि भूमाता ने दिया। तो भगवान के क्रोध से सृष्टि होता है, भगवान के क्रोध से प्रेम जगता है, भगवान के क्रोध से मोक्ष प्राप्त होता है, हमारे क्रोध से सर्वनाश होता है जीव के क्रोध से, ये समझने की बात है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान जैसे कभी कभी माता भी बच्चे को बनावटी क्रोध दिखाती है, क्यों, ताकि बच्चे पढ़ाई करेगा, नहीं तो दिन भर खेलता रहता है। इस तरह भगवान जो क्रोध करते हैं वो क्रोध के वश में आकर भगवान तमोगुण में नहीं चलते हैं, हम जैसे हम लोग तमोगुण में चले जाते हैं क्रोध के कारण और सर्वनाश होता है उसके कारण। तो इसलिए भगवान जो है उनमें काम नहीं, इस तरह का काम वासना नहीं, क्रोध नहीं, शुद्ध भावनाएं हैं भगवान में। इस तरह बताते हैं कि अभी शिव जी के बारे में बता रहे हैं कि शिव जी ने एक बार तपस्या करते समय देवताओं ने सोचा कि अरे शिव जी तपस्या के मूड में चले गए, अभी पार्वती तो है लेकिन अभी हमारे देवताओं के पक्ष में एक देवसेनापति चाहिए हमको, लेकिन अगर शिव जी देने के लिए तैयार नहीं हो तो हम में से कोई भी योग्य नहीं है, एक शक्तिशाली पुत्र चाहिए हमको। तो उनको शिव जी को विचलित करने के लिए पार्वती माता को उन्होंने विनती किया, आप जाकर उनको थोड़ा विचलित करो शिव जी को। तो तब कामदेव सोचा कि पार्वती आ रही है, मैं भी अपना काम करूंगा, शिव जी काम के वश में आकर क्या करेंगे, बच्चा पैदा करके देंगे हमको। इस तरह सोचकर कामदेव आया तो शिव जी बहुत क्रोधित हो गए, उत्तेजित हो गए, अरे मेरे तपस्या को भंग करने के लिए आया है। तो अपने तीसरे आंख को खोल दिया, ऐसे उनको जलाकर राख बना दिया। तो उनकी पत्नी जो रती गई, रोती हुई भाग भाग गई पार्वती के पास। माता दा देवताओं की ही विनती था, कामदेव को मुझे और भेजा, पति पत्नी को भेजा शिव जी को विचलित करने के लिए। अभी मेरे पति को नाश कर दिया इन्होंने, क्या किया जाए। पार्वती ने बोला चिंता मत करो, थोड़ा शांत हो जाएंगे, अभी मैं तुमको सिफारिश दूंगी, तुम्हारे पति के लिए और कुछ शरीर मिल जाएगा। तो उसके बाद उधर द्वारका में इनके भगवान के पुत्र बनकर उसके बाद लीला होता है। तो इस तरह कामदेव को और एक शरीर दिया जाता है बाद में। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, शिव जी के सामने जब कामदेव आया, शिव जी उनसे क्रोधित हो गए। कामात क्रोधो भी जायते हम बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि शिवजी तक, शिवजी पर्यंत इस दुनिया में लोग काम को पराजित करने में तकलीफ होता है। शिवजी उनसे पराजित नहीं हुए, फिर भी क्रोध के रूप में आ गया बाहर। इस तरह हम देखते हैं कि तपस्वी लोग जो होते हैं, काम को दबाते समय वो क्रोध के रूप में परिवर्तित होकर दूसरा इंकारनेशन होता है इसका, काम का। काम और क्रोध दोनों अनुज हैं, ऐसे होता है। लेकिन भगवान के संबंध में देखा जाए तो कामदेव को पराजित भी कर देते हैं, खुद मुस्कुराते रहते हैं भगवान। जैसे एक बार भृगुमुनि आकर ब्रह्मा जी को, शिव जी को, विष्णु को जब परीक्षा लिया, ब्रह्मा जी को तो उन्होंने नमस्कार नहीं किया बस, फिर भी नाराज हो गए ब्रह्मा जी। अब शिव जी के लोक में गए कैलाश में, शिव जी उनको आलिंगन करने के लिए आए, बोला कि निकट मत आओ, तुम्हारे पास त्रिशूल है, भस्म है, सर्प है, जटा है बहुत, तुम गंदा दिख रहे हो, निकट मत आओ, बोला। तो शिव जी उत्तेजित होकर त्रिशूल उठाकर पीछे भागे उनको मारने के लिए, पार्वती माता ने पकड़ लिया उनको। तो ब्रह्मा शिव जी दोनों ने क्रोध किया, विष्णु के लोक में जाकर लात मारा विष्णु के पक्षस्थल पर। क्या हुआ, विष्णु उठ गए, उठकर उनके पांव दबाने लगे, बोले कि भृगु मेरे हृदय तो पत्थर जैसे, बहुत पाषाण जैसे है मेरे हृदय, तुम्हारा पांव देखा कितना मृदु है, तो मैं थोड़ा तुम्हारा मसाज करता हूँ पांव का, है ऐसे बोले। तो भृगु रोने लगे, अरे इतना सहनशील व्यक्ति इस दुनिया में किसी ने देखा नहीं है। तो भगवान के हृदय में क्रोध को पैदा करना नामुमकिन है, विष्णु को उत्तेजित नहीं कर पाए हैं। इस तरह नारायण ऋषि को उत्तेजित नहीं कर, क्रोध से भी नहीं, काम से भी नहीं, उत्तेजित नहीं कर पाए, ये बात बताएंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में। इस तरह बता दें, क्योंकि भगवान आप तक काम है, अपने आप में तृप्त है, आत्माराम है। और भगवान तो असीमित मात्रा में उनके पास इच्छाएं भी हैं, लेकिन उनके किसी भी इच्छा का ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्ति नहीं हुआ, इच्छा करते ही वो पूर्ति हो जाता है भगवान के। इसलिए कुछ वो काम क्रोध इत्यादि के वश में नहीं आते हैं, प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं। तो अभी आपको एक पावर पॉइंट दिखाएंगे आपको, अभी हाँ दिखाएंगे आप, आ रहा है उधर, हाँ करेक्ट। तो ये कामदेव है, देखिए वो गन्ने का बाण लेकर घूमता है, और फूल का बाण और गन्ने का धनुष लेकर वो घूमता है। क्या करता है, श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं उनके गीत गोविंद के कमेंट्री में, पांच बाण है उनके पास। क्या है, इन्फैचुएशन, एजिटेशन, हार्ट बर्निंग, एक्सट्रीम ड्राइनेस, डिस्ट्रक्शन। तो ये पांच बाणों के बारे में वर्णन में अगले स्लाइड्स में किया हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको, एक मिनट। हाँ ये बताते हैं कि इस दुनिया में स्त्रीलिंग पुल्लिंग इनके बीच में आकर्षण होता ही है, जानवरों में पंछियों में देखा गया है, लेकिन मनुष्य जो होता है सिर्फ देखकर तुरंत वो शिकार नहीं बनता है वो, क्योंकि मनुष्य के पास एक बुद्धिमता है, जिज्ञासु होने के कारण तत्व जिज्ञासा करके इस आकर्षण से आसानी से मनुष्य उठ सकता है, इसे बता रहे हैं। लेकिन जानवर पंछी इत्यादि उठ नहीं सकते हैं, वो तो खाने पीने सोने मैथुन करने इत्यादि के बारे में ही सोचते हैं वो। तो इस दुनिया में अगर कोई एक स्त्री में एक खूबसूरती, नहीं तो पढ़ाई, नहीं तो धन, नहीं तो यश, इस तरह एक दूसरे से देखकर आकर्षित होते हैं। स्त्री साधारण रूप से पुरुष से आकर्षित होती है, कब? अगर पुरुष खूबसूरत हो, अगर बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत लोगों के ऊपर प्रभाव डालता हो, बहुत धनी हो, बहुत बड़े पदवी में हो, अगर दुनिया के लोग उनको बहुत मानते हो, सेलिब्रिटी हो, तो वो लोग उनसे आकर्षित होते हैं, स्त्रियाँ ज़्यादा हैं। और पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है अगर उसके अंदर खूबसूरती हो, अगर मीठे मीठे बात करती हो, तो उसके साथ नम्र पेश आती हो, तो उनसे वो भी आकर्षित होता है दुनिया में। तो इधर बताते हैं, जब इस तरह की परिस्थिति आता है स्त्री पुरुष के बीच में, जब कामदेव आ जाता है उधर, वो बाण चलाता है। पहला बाण क्या चलाता है? ऐसे बाण चलाता है जैसे हमने बोला इन्फैचुएशन। उससे क्या होता है, वो दूसरे स्त्री के अंदर क्या करता है, ये पुरुष जो है एक स्त्री के अंदर अच्छा ही गुण देखता है, उसमें कुछ बुरा नहीं देख पाता। जैसे एक पति ने अगर उसके अपनी पत्नी बहुत खूबसूरत दिखती है उसको, बाहर के लोग बोलेंगे अरे ये तो बंदर जैसे दिख रही है, लेकिन उसको कैसे दिखेगी? वो खूबसूरत दिखेगी, क्योंकि कामदेव ने छेद कर दिया उनके हृदय में, इसलिए खूबसूरत दिख रही है। तो आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा, अरे इसके पीछे क्यों पड़ा है? वो पड़ा है क्योंकि कामदेव का बाण छेद कर दिया उसके हृदय में, इसलिए पीछे पड़ रहा है। ये पाला है, उल्लू बनाता है, उसको पागल बना दिया उसको, इसलिए किसी भी स्त्री के पास पीछे पड़ता है, हालांकि वो खूबसूरत भी नहीं है, फिर भी पड़ता है वो पीछे, ऐसे बताते हैं। और वो बार बार उसके बारे में सोचता रहता है, जब अगर मौका मिलता हो तो वो बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, इसके कारण उसके अंदर जो वेग है वो बढ़ता जाता है, इन्फैचुएशन। दूसरा है, दूसरा एरो क्या है, सेपरेशन। तो उसके मन विचलित होता है, इंद्रिय विचलित होते हैं, और कभी कभी उसको इधर मिलना उधर मिलना करता है, बाद में दिन भर मिलना चाहते हैं वो, कैसे? या तो फोन में, नहीं तो वीडियो फोन में, नहीं तो व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहते हैं, इस तरह मिलकर निकट आने के लिए प्रयत्न करते हैं। उस समय उनको लगता है कि अमृत ही अमृतमय है संबंध, ऐसे लगता है उनको। तो उसके बाद उनका विवाह हो जाता है बोलते हैं, उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ते हैं, आज बताते हैं। लेकिन वो बहुत समय नहीं टिकता है, क्योंकि तीसरा ये डालता है बाण, पहले इन्फैचुएशन, सेकंड इज फीलिंग ऑफ सेपरेशन, ओ कब मिलूंगा कब मिलूंगा उससे, ऐसे दूसरा है विरह भावना होना, और तीसरा बोलते हैं बर्निंग। बर्निंग मतलब उनके हृदय जलना चालू हो जाता है। कैसे जलता है? क्योंकि उनके उनके संबंध एक प्रॉब्लम में चला जाता है, क्योंकि कामान क्रोधो भी जाए थे, झगड़ा होता है, तुम ये नहीं समझती बोलता, वो बोलती है तुम ये नहीं समझता, तुम ऐसे, तो झगड़ा होता है उनके बीच में, जैसे चिंगारियां आते हैं उनके रिश्ता में, वो बर्निंग होता है। और चौथा होता है उनका हृदय सूख जाता है, ड्राइनेस बोलते हैं उसको, और उस समय सोचते हैं कि हम डाइवर्स ले लें, वो शराब पीता है, डाइवर्स लेना चाहता है, कभी कभी उसको मारता है, लाफा देता है, लात देता है, कभी तो स्त्री अपने माँ बाप को शिकायत करती है तो कोर्ट में जाती है, डाइवर्स लेते हैं, इस तरह की चीज़ होता है ड्राइनेस। और पांचवा है मरणम बोलते हैं, उसका मतलब मृत्यु, या तो कभी कभी डाइवर्स एक देने के लिए तैयार है, दूसरा तैयार नहीं है, तो सालों साल होकर कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, पति नहीं तो पत्नी, नहीं तो कभी कभी एसिड लेकर फेंक देते हैं, कभी किसी को खून कर देते हैं, इस तरह है, इस तरह होता है, कभी आत्महत्या करके वो गोस्त बनते हैं, पिशाच बनते हैं, ऐसे। ये पांचवा है। तो इस तरह पहला क्या था, इन्फैचुएशन, सेपरेशन, बर्निंग एंड ड्राइनेस एंड इन्फैचुएशन, एजिटेशन और सेपरेशन, हार्ट बर्निंग, एक्सट्रीम ड्राइनेस एंड डिस्ट्रैक्शन, ये पांच हो गया है ना, ये बताते हैं। ये शिव जी का बताया ना अभी, प्रभु के तात्पर्य से मैं बताया ना, यही है शिव जी का, काम देखो जला रहे हैं देखे। लेकिन ये बताया मैंने आपको, कौन? नरनारायण ऋषि। वो तो हंस रहे थे मदन को बुलाकर, इसलिए हम बोलते हैं वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतां समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। बोलते हैं कि कंदर्प कोटि कमनीय विषय, कोटि कोटि कंदर्प भी क्यों ना आ जाए, सबको आकर्षित कर देंगे भगवान कृष्ण। कोटि कोटि कंदर्पों की खूबसूरती को मिलाकर भी कृष्ण की खूबसूरती नहीं बनता, इतने कृष्ण खूबसूरत हैं। वो ही ओरिजिनल कामदेव हैं कृष्ण। और कृष्ण ऐसे कामदेव हैं, सिर्फ स्त्रियों को नहीं आकर्षित करते, वो गाय बच्चों को आकर्षित करते हैं, हिरण मोरों को भी आकर्षित करते हैं, बंदरों को आकर्षित करते हैं, गोपों को, गोपियों को, माता पिता को, सारे सृष्टि को आकर्षित करते हैं। सकलम आकर्षयति इति कृष्ण, आज बताया गया है, सर्व आकर्षक है कृष्ण। लेकिन ये कामदेव सिर्फ स्त्री पुरुष के आकर्षण में आकर्षण देते हैं ऐसे। तो इस तरह विष्णु चक्र ठाकुर ने लिखा है 10 एफेक्ट्स ऑफ क्यूपिड, उसको और एलैबोरेट किया है। चक्षुराग प्रथमम चित्ता संगस्ततोथ संकल्प निद्रा छेदस्तनुता विषय निवृत्तिस त्रपा नाशः उन्मादो मूर्छा मृतिर इत्येताः स्मार दशा दशैव स्युः। बताते हैं कि अभी मैंने पहले 5 बताया आपको, इधर 10 बताया है कामदेव का इफेक्ट क्या है। देखिए, पहले आकर्षण, आंखों के द्वारा ही आकर्षण चालू होता है। और दूसरा है अत्यंत आसक्ति। तीसरा है दृढ़ता हो जाना कि मैं इसको पाकर ही बैठूंगा, इससे मुझे आकर्षण हो गया, आसक्ति हो गया, मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहिए ही चाहिए इसे। उसके बाद नींद उड़ जाता है, एक व्यक्ति बार बार रात के समय भी सोच रहा है, स्वप्न कर रहा है उस स्त्री के बारे में, ऐसे बिकमिंग एमेशिएटेड, क्योंकि वो स्त्री मिल नहीं रही है उसको आसानी से, वो पतला हो जाता है इसके कारण। और चौथा बोलते हैं कि बाहरी दुनिया की चीज़ों में इंटरेस्ट चला जाता है, बार बार अपने मित्रों के पास इधर उधर सब उस स्त्री के बारे में ही बात करता रहता है, बाकी चीज़ों में उसका ध्यान निकल जाता है उसका। उसके बाद लज्जा चला जाता है, वो उस स्त्री के पीछे पड़ता है, रोता है, फोन करता है, पूंछ हिलाता है, क्रीड़ा मृग बनता है, बोलता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, जान भी दे दूंगा, मुझे छोड़ो मत, ऐसे शेमलेस बन जाता है, बेशरम बन जाता है वो। उसके बाद पागल ही बन जाता है उसके बाद। उसके बाद अगर वो मिलते नहीं, कभी कभी दोनों भी आत्महत्या भी करते हैं, देखा ना आपने, ऐसे स्टन हो जाए, स्टंट का मतलब पत्थर जैसे बन जाता है ऐसे, उसके बाद मरता है। तो चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि मैंने आपको इतना वर्णन में क्यों बताया है, जब कृष्णा बलराम मथुरा में प्रवेश किया, देखिए कितना भीड़ भाड़ है उधर मथुरा में, बहुत भीड़ भाड़ आया था कृष्ण को बलराम को देखने के लिए, और अनेक स्त्रियां छत के ऊपर चढ़कर ऊपर से देख रही थी। अभी सब लोगों के अंदर उनके आंखों में ऐसे ही आकर्षण आया कृष्ण के ऊपर। इस 10 आइटम में लास्ट आइटम छोड़कर पहला 9 आइटम आ गया उनको। क्या क्या था? पहले उन्होंने आंखों से पहली बार कृष्ण को देखा, बस लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं ना, एक बार देखने के बाद बोले अरे ये कौन है, इतना खूबसूरत व्यक्ति हमने देखा नहीं है कभी। उसके बाद अत्यंत आसक्ति हो गया, जो लोगों ने एक बार देखा वो सब छोड़ छाड़ कर उनके पीछे भागने लगे और देखने के लिए। ये बता रही है रुक्मिणी भी, स्वर्ग में कृष्ण जाते हैं सब देवी देवता आते हैं उनको देखने के लिए, मथुरा में जाते हैं सब मथुरावासी ऊपर चढ़कर देखते हैं कृष्ण को, ऐसे वृंदावन में आते हैं सब लोगों की आंख उनके ऊपर ही है ऐसे। जब भगवान कृष्ण इस तरह के कहीं भी जाते हैं, इतने खूबसूरत हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्यकर नव्यवरैर्हरतोऽङ्ग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम मे। बोलती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर का मतलब है भुवनेश सुंदर भुवनानाम सुंदर, ये ब्रह्मांड में आप ही सबसे सुंदर हो, अब सब ब्रह्मांड में आप ही सुंदर हो, ऐसे बोलती है। इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आकर्षित हुई आपसे, अरे सबके सब जीव आकर्षित होते हैं। अगर आपसे आकर्षित नहीं हुए, आपके माया से आकर्षित होते हैं। कोई कुत्ता बनकर कुत्ती से आकर्षित होता है, अगर आपके आकर्षण से उनका असर नहीं पड़ता तो उनके ऊपर आपका ही एक छोटा अंश है माया देवी, उनके सृष्टि के साथ आकर्षित होते हैं मूर्ख लोग, हैं ऐसे बताती है। तो इस तरह पहले आकर्षण, उसके बाद आसक्ति आता है भगवान को देखकर, उसके बाद सब लोग हृदय में लगता है कि अरे मैं इनके बिना मैं रह नहीं सकता, दृढ़ता से इनको पाकर ही बैठूंगा, ये सब लोग सोचते हैं। उसके बाद लोग नींद उड़ जाता है उनको, कब आएंगे भगवान वापस, कब हम देख पाएंगे, ऐसे उनको लगता है। ऐसे ब्रजवासी भी कभी पतले बन जाते हैं, कब आएंगे कृष्ण, कब आएंगे ऐसे हैं, और बाहर चीज़ों में उनको रुचि चला जाता है। जैसे एक गोपी वृंदावन में कृष्ण को जाकर देखना चाहती थी, जब गाय बच्चनों को चराने के लिए भगवान जाते थे रोज सुबह, सब लोग बाहर आकर खड़े होते थे, लेकिन ये जो स्त्री थी घर वाले लोगों ने छोड़ा नहीं, उनको बोला अरे घर में इतना काम पड़ा है, तुम क्या उधर बाहर सड़क में जाकर खड़ी हो, आ जाओ अंदर। तो घर वालों ने बुला लिया, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर बोला कि घर का काम, घरेलू काम करो। हाँ, तो घर में काम कर रहे थे, लेकिन मन कर रहा था अभी निकल जाएंगे भगवान, सुबह गाय बछड़े लेकर देख नहीं पाऊंगी। घर वाले जब अंदर गए थे घर के पीछे, तो ये वापस आई, खिड़की भी बंद था, दरवाजा भी बंद था, दरवाजे में थोड़ा छिद्र था ना, ऐसे उधर से कृष्ण को देखने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन दिख नहीं रहे थे कृष्ण, कुछ गाय बछड़े दिख रहे थे लेकिन कृष्ण नहीं दिख रहे थे। लेकिन कृष्ण को देखने के लिए आतुरता हुई, इसलिए कृष्ण ने क्या किया, जान लेते ना भगवान हमारे मन की बात है? समझ कर कृष्ण ने एक बछड़े के पूंछ को ऐसे हिलाया, पूंछ को क्या बोलते हैं इसको, करते हैं ऐसे है? ऐसे क्या भगवान, ऐसे क्या पूंछ को, तो भागते हुए गया है ये बछड़ा एग्जैक्टली जाकर ये स्त्री जो थी ये गोपी उनके घर के सामने खड़े हो गया बछड़ा। तो कृष्ण उसके पीछे पीछे आए, उस बछड़े को उठाने के लिए आए, तब देखा कि ये छिद्र से वो देख रही है, सिर्फ उनके आंख दिख रहा है, किसका, गोपी का आंख, एक आंख से दिख रही है ऐसे। तब कृष्ण अपने मुरली को लेकर सुंदर एक त्रिमंगल ललित रूप में खड़े होकर मुरली बजाकर मुस्कुराया उन्होंने, ये सुंदर स्वरूप का छवि बन गया उनके चित्त में, इसलिए भगवान का नाम चित्त चोर है। और इस तरह मुस्कुराकर दो क्षण खड़े थे, भगवान निकल गए उधर से, लेकिन गए भगवान उधर से लेकिन उनके हृदय से निकल नहीं पाए भगवान है। तो बाद में घर वाले बोले इसको, चलो अभी पानी लेकर आओ कुआं से। तो ये स्त्री एक गोपी अपने बच्चे को भी लेकर गोद में बाल्टी लेकर गई, रस्सी लेकर गई, तो कृष्ण मन में कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, कृष्णमय बन गई वो गोपी। सड़क में चल रही है, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं उसको, हाथ में इधर बच्चा है इधर बाल्टी है, मालूम नहीं। गई वो कुआं के पास, तो रस्सी डाला वो कुआं में, पानी निकलना है ना, बच्चे को बिठा रही है बकेट में। लोगों ने पूछा ए मूर्ख बच्चे को क्या बकेट में बिठा रही हो, तो उन्होंने निकाला बच्चे को। इसके बाद इसको बोलते हैं मनमना, बोलते हैं मनमना बाबा, मनमना का मतलब है इतना भगवान के चिंतन में डूब गई, इसको बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड इन एक्सटर्नल थिंग्स, बाहरी दुनिया को भूली गई, कृष्णमय हो गई वो ऐसे गोपी। शेमलेस का मतलब है, जैसे जब कृष्ण बलराम को निकाल कर लेके जाने वाले थे ना क्रूर जी मथुरा के लिए, तब गोपियां निर्लज्जित होकर बाहर आकर रोने लगी जोर से, जमीन में लोटपोटने लगी, आप जाइए मत हमको छोड़कर। ऐसे एक श्लोक भी आता है, एक श्लोक आता है एवं ब्रुवाणाम विरहातुरा वृषम व्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जाम रुदुस्म सुस्वरं गोविंद दामो धरमाधवेति, गोविंद दामो धरमाधवेति, गोविंद दामो धरमाधवेति, ऐसे बताती है। ये बताया विसृज्य लज्जाम, यही बताया गया शेमलेसनेस, उन्हें परवाह नहीं किया, कोई भी जो भी बोलना चाहे बोल सके, लेकिन हम कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं वृंदावन से बाहर, ऐसे हो गई वो मैडनेस। लेकिन कृष्ण को लेकर गए अक्रूर जी, तब पागल होकर ऐसे ही खड़ी थी, जिस पोस्ट में खड़ी थी ऐसे ऐसे अलग अलग पोस्ट में खड़ी थी, जैसे चित्र जैसे हैं गोपियां हैं, ऐसे पागल हुई। उसके बाद पागल होकर कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का को रचा रही थी उद्धव के सत्र में, उद्धव जब बता रहे थे कृष्ण लीलाओं उस समय। कभी बिकमिंग स्टंड का मतलब है ऐसे पेड़ जैसे रह जाती थी, लेकिन मरती नहीं थी कभी। क्यों? क्योंकि वृंदावन के ब्रजवासियां कभी मरते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर कृष्ण आ जाएंगे तो सेवा कौन करेगा उनको, इसलिए वो जिंदा रहे। पहले नौ आइटम लागू था उनके ऊपर, ऐसे विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर बताते हैं। तो इस दुनिया में काम वासना के लिए सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं? हमको तो इतना मथुरा के और वृंदावन के वासियों के समान हमारे अंदर इतना प्रेम नहीं जगा है। अब ये दिखाए, इसलिए इधर सॉल्यूशन क्या है? कुछ दक्ष प्रजापति जैसे लोग बोलते हैं कि अरे तुम काम वासनाओं को मिटा नहीं पाओगे, इसलिए विवाह करो, बच्चे पैदा करो, प्रजापति बनो मेरे जैसे, ऐसे लोग लोग बोलते हैं। वो बताता है इसे, नानुभूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णताम। ये बताता है कि नानुभूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णताम निर्विद्यते स्वयं तस्मात् न तथा भिन्न धीप परे ही। बोलता है कि दूसरों के बोलने से तुम छोड़ नहीं पाओगे काम को, जितना भी साधु महात्मा लोग उपदेश देंगे छोड़ दो तुम छोड़ नहीं पाओगे। बोलता है कि विवाह कर लो, बच्चे पैदा करो, बड़ा संसार चला हो, धीरे धीरे इस दुनिया की विषय भोगों का तीक्ष्ण जो सुई तुमको मारेगा, तब तुमको अकल आएगा, तब तुम जग जाएगा, तभी छोड़ देगा तुम। ऐसे बोल रहा है कौन? दक्ष प्रजापति। भोग करके सीखो बोलता है वो। और अष्टावक्र मुनि और बाकी लोग वो बोलते हैं कि अरे तुम्हारे बुद्धि को लगा कर त्याग दो इस दुनिया को, ये दुनिया क्षणभंगुर है, नश्वर है, सब गंदा चीज है, पदार्थों में मत पड़ो, भौतिक पदार्थों में। तुम ज्ञान को जगा कर तुम ऊपर उठ जाओ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं, बाहरी रूप से छोड़ देते हैं दुनिया के भोग को, लेकिन इनके मन में जो काम कर्म बीज हैं वो मिटते नहीं। जैसे पिक्चर दिखा है इधर सौबरी मुनि का, हाँ देख रहे हैं आप लोग, तो इस तरह बाहरी बाहरी ऊपरी ऊपर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन वासनाएं सता रहे थे। इसलिए भगवान भी बताते हैं इनको, मुचुकुंद को बताते हैं कि अक्षीण वासनम राजन दृश्यति पुनरुत्थितम। जो ज्ञानी कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, उनकी वासनाएं ऊपर उठ आते हैं, वो लोग ऊपर उठ नहीं पाएंगे उनके। लेकिन अगर आप शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते हो तो आप ऊपर उठ जाओगे, हैं? आपको इन वासनाएं सताएंगे नहीं। न काम कर्म बीजानाम यश्च चेतसि संभवः वासुदेव ऐकनिलयः सवै भागवतोत्तमः। अगर आप उत्तम भागवत का मतलब क्या है, न काम कर्म बीजानाम, काम कर्म बीज आपको सताएंगे नहीं, क्योंकि मिटी जाते हैं, वो जल जाते हैं, नहीं तो जैसे बुनते हैं ना, उनको बुनने से वो अंकुरित नहीं होते, ऐसे बताते हैं। किसके लिए? वासुदेव भक्तों के लिए। वो वासुदेव ही का निलय है, एकाग्र चित्त के साथ भगवान वासुदेव की शुद्ध भक्ति करो, ये सब जल जाएगा, मिट जाएगा, ये सब बीज, ऐसे बताते हैं। तो बड़े बड़े विश्वामित्र मुनि जैसे योगियां भी उनका पतन हुआ है, ऐसे बताया जा रहा है। इस तरह अग्निधर पूर्व चिति का भी सुना हमने। लेकिन जो योग इंद्रिय संयम है, योग अभ्यास से भी मन इंद्रियों का नियंत्रण थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वासनाएं रह जाती हैं। लेकिन वासनाओं को उठाने, वासनाओं से ऊपर उठने के लिए प्रबोधन सरस्वती बताते हैं कि भक्ति को तीव्रता से करो, तीव्र भक्ति। भगवान के सुंदर स्वरूप की ओर आकर्षण हो गया तो तुमको दूसरे लोगों की स्वरूप, दूसरे लोगों की खूबसूरती से आकर्षित नहीं होगा। जैसे सर्प के मुख में दांत है, वही जहरीला दांत है, वो जहरीला दांत को अगर किसी ने तोड़ दिया, निकाल दिया, तो सर्प से डर नहीं है। तो हमारे सब इंद्रिय सर्प जैसे हैं, और इंद्रियों में इंद्रिय भोग करने का प्रवृत्ति दांत है। उस दांत को निकाल दो भक्ति मार्ग के द्वारा, तीव्र भक्ति करके, तो निकालने के बाद भोग करने की प्रवृत्ति ने मिट गया तो तुम भक्ति में डूबे रहोगे। जैसे हरिदास ठाकुर, वो जैसे एक कछुआ का उदाहरण देते हैं भगवान कृष्ण। कछुआ जो है जब कतरा आता हो तो अंदर ले लेता अपने इंद्रियों को, इस तरह हरिदास ठाकुर ने भी अपने इंद्रियों को अंदर लेकर पूरा कृष्ण नाम में लग गए वो, इसलिए उनको विचलित नहीं कर पाई वो वेश्या, तीन दिन वापस आने के बाद भी। इस तरह हम लोग भी एक संपेरा होता है ना, वो बजाता है ऐसे बजाता है, इस तरह वो सर्प ऐसे नाच नाच कर वो शांत हो जाते हैं, ऐसे उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग भी संपेरा जैसे बोलते हैं, प्रपंच बोलते हैं, नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बार बार नाम लेकर हमारे इंद्रियों के अंदर भोग करने की प्रवृत्ति को मिठाना, इंद्रियों को शांत करना, मन को शांत करना, भगवान वासुदेव की एकाग्र भक्ति में लगना, उसके द्वारा ही हम इंद्रियों को जीत सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्त लोगों शहर के बीच में रहकर सैकड़ों हजारों सुंदर स्त्रियां रह सकती है, वो अपने चलना फिरना मुस्कुराना इत्यादि से अनेक तिरछी नजर इत्यादि डाल सकती हैं, लेकिन जो भक्ति में गंभीर हो गए वो लोग योगियों जैसे पतन नहीं होता उनका, बोलते हैं योगी लोगों का पतन होता है, लेकिन भक्त लोग गाते हैं नाचते हैं ऐसे भगवान की भक्ति में हमेशा डूबे रहते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंदा की, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।